विशेष बहुत ही प्रिय महीना है भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि इस महीने में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की और ज्यादातर लीलाएं जो भगवान ने की वो उनके भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए की, उनके भक्तों के वश में आने के लिए की, अपना प्रेम भक्तों को दर्शाने के लिए उन्होंने ये सुंदर सुंदर लीलाएं इस कार्तिक के महीने में की। आज के दिवस पर या दीपावली के दिवस पर भगवान ने बहुत ही सुंदर लीला की थी, जिसका वर्णन हमने आज सुबह करना प्रारंभ किया था, दामोदर लीला। वैसे इस दिवस पर कई और लीलाएं भी भगवान की हुई हैं। दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिवस पर भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पुनः अयोध्या आए थे और आज के दिवस पर उन्होंने राज्य संभाला था और इस आनंद में अयोध्या के हर घर में दीप जलाए गए थे, इसलिए इसे दीपावली कहते हैं। दीपावली अर्थात बहुत सारे दीपों को जलाना, दीप वली, वली अर्थात बहुत सारे। श्रील प्रभुपाद ने भी समझाया कि हम लोगों को दीपावली जब मनानी चाहिए तो मंदिर को बहुत सारे दीपों से सजाना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। हर उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है श्रवण, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, मंदिर में आना, शांति से बैठना, भगवान की लीलाओं को सुनना और उन लीलाओं से ऐसी शिक्षाओं को ग्रहण करना जो हमारे भक्ति के जीवन में एक ऐसी क्रांति लेकर आए, एक ऐसा भाव लेकर आए जिससे हम भगवान के प्रति प्रेम को और गाढ़ा कर सकें। अगर हमारे सारे प्रयासों से कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो फिर ये मान लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। श्रम एव हि केवलम् भागवत बतलाता है, न उत्पादयेत् यदि रतिम्, श्रम एव हि केवलम्। अगर हमारे हृदय में रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो फिर केवल श्रम है, कोई लाभ नहीं है ऐसे कार्यों का। और श्रवण ये इतना महत्वपूर्ण है कि केवल कृष्ण की लीलाओं को सुनने मात्र से हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है। आज की जो लीला है इसका प्रारंभ सुबह हमने किया था यशोदा माता के वर्णन से। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि यशोदा माता का जो वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया गया है कि वो कैसी थी, कैसी साड़ी पहनी थी, कैसी लग रही थी, उनके सिर पे बालों में जो फूल थे वो कैसे थे, ये सब वर्णन सुनने से भक्त के हृदय में कृष्ण के प्रति वैसा ही वात्सल्य प्रेम उत्पन्न होता है जैसा यशोदा माता के था। और यही कारण है सुखदेव गोस्वामी बड़े विस्तार से यशोदा माता का वर्णन करते हैं और इन लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो आप सबसे विनती है कि बड़े ध्यान से इन लीलाओं को श्रवण करें। पीछे कुछ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं तो सभी से विनती है कि शांति से एक जगह बैठें और ताकि सभी को लीला का आनंद आए और सभी पूर्ण रूप से कृष्ण में समा सकें या कृष्ण की लीलाओं में समा सकें। परीक्षित महाराज ने इस लीला के पहले एक श्रुति फल दिया है। श्रुति फल अर्थात इसको सुनने का क्या लाभ है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था, सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे भागवत क्लास में, नंद किम् अकरोत् ब्राह्मण श्रेयरेवं महोदयं यशोदा च महाभागा पपोयस्य स्तनं हरिः। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या ऐसा यशोदा और नंद महाराज ने किया था कि उनके भाग्य का इतना उदय हो गया महोदय कि जो भगवान श्री हरि उन्होंने यशोदा माता के स्तन का पान किया। यस्य स्तनं हरि, तो ऐसा क्या किया था नंद किम अक्रोध ब्राह्मण, उन्होंने प्रश्न किया। और साथ ही साथ वो हमें ये भी बतला रहे थे, वो एक दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी से कह रहे थे कि आप उसको सुनाइए कि उन्होंने क्या किया ताकि हम भी वही करें और हम भी उस प्रेम को प्राप्त कर सकें, या फिर कम से कम उन लीलाओं को सुनकर उनको श्रवण करके उसी प्रेम का उसी लीला का आस्वादन कर सकें। तो एक दृष्टि से ये श्रुति फल है कि जो भी इस लीला का श्रवण करते हैं उन्हें वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जो आनंद उस दिवस पर यशोदा माता को, ब्रज की गोपियों को और अन्य ग्वाल बालों को हुआ। तो इसलिए श्रवण ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण के द्वारा हम कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करते हैं, अन्यथा कृष्ण की लीला में प्रवेश करना हम जैसे बद्ध जीवों के लिए संभव नहीं है। लेकिन केवल श्रवण के द्वारा, और वो भी कैसा श्रवण जो परंपरागत ढंग से आचार्यों के द्वारा हमें प्रदान किया गया है, ऐसे श्रवण से हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। अन्य श्रवण हो सकता है कृष्ण के बारे में ही हो, लेकिन अगर परंपरा से नहीं है, आचार्यों के द्वारा प्रदान किया गया नहीं है, तो केवल वो नरक की ओर ले जाएगा। इसीलिए श्री प्रभुपाद जो परंपरा में आते हैं उनके द्वारा दिए गए इस ज्ञान को आज हम लोग ग्रहण करेंगे। तो सुबह हमने प्रारंभ की थी लीला कि कैसे जब ये प्रश्न हुआ नंद किम अक्रोध ब्राह्मण, तो फिर उन्होंने द्रोण और धरा का इतिहास बतलाया। उन्होंने एक दृष्टि से ये प्रश्न किया था कि अरे देवकी और वसुदेव को ये आनंद नहीं मिला, लेकिन यशोदा को मिला, नंद बाबा को मिला। तो सुखदेव गोस्वामी एक दृष्टि से बतला रहे थे कि वसुदेव और देवकी ही यशोदा और नंद हैं। ये हम लोगों ने सुबह चर्चा की थी कि वो कैसे हैं। तो फिर द्रोण और धरा, इन्होंने ब्रह्मा जी से आदेश प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने इनको कहा ये वसु हैं, और इनको कहा कि आप पृथ्वी पर जाइए और वो पालन कीजिए। फिर वो यहां पर आए, बड़ी कड़ी तपस्या की, और अगले जन्म में वे यशोदा और कृष्ण, यशोदा और नंद बने और कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में उन्होंने पाया। तो ये कथा हम लोग सुबह बड़े विस्तार से सुन चुके हैं। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन आरंभ करते हैं। दीपावली के दिन ये लीला हुई थी जब कृष्ण केवल 3 वर्ष के थे। जन्माष्टमी पर 3 वर्ष पूरे हुए थे और कुछ महीने और निकल गए थे। कृष्ण सोच रहे थे इतना समय हो गया, माँ ने अभी तक डांटा नहीं है, मारा नहीं है, तो इसलिए वो डांट खाना चाहते थे। देखिए कृष्ण भी किन किन चीजों में आनंद लेते हैं। तो इसलिए कृष्ण ने दामोदर लीला की, और फिर यशोदा मैया, उनको बहुत शिकायतें आ रही थी। कई शिकायतों का वर्णन हमने सुबह किया कि कैसी कैसी शिकायतें आ रही थी। तो अंत में उन्होंने सोचा कि अब मुझे स्वयं पद्म गंधा गायों का दूध निकालकर उसका दही जमाकर और उससे माखन निकालना चाहिए, दही मथनी चाहिए, और मैं स्वयं ये करूंगी, क्योंकि जो सेविकाएं ये सब करती हैं तो उनमें वो वात्सल्य रस नहीं होता, वो प्रेम नहीं होता, और इसीलिए कृष्ण ये दूसरों के जाकर माखन खाते हैं। हाँ, कृष्ण जब पकड़े जाते थे, हम लोगों ने सुबह वर्णन किया था, तो जब पकड़े जाते तो उससे पहले ही बहुत सारा माखन खा चुके होते थे, बंदरों को खिला चुके होते थे, बंदरों का भी पेट भर जाता था। और फिर जब गोपियां पकड़ती तो फिर उनके सामने ही माखन निकालकर बंदरों को दिखाते, पर बंदर भी मुंह घुमा लेते थे क्योंकि उनका पेट भरा होता था। तो फिर वो गोपियों से कहते कि अरे देखो तुम्हारा माखन ये तो बंदर भी नहीं खाता है, मैं क्यों खाऊंगा इसको। तो इस तरह से बहुत सारी शिकायतें यशोदा माता के पास आई, और फिर हमने ये भी वर्णन किया था कि भगवान माखन चोरी क्यों करते हैं, क्या कारण है। भगवान सोचते हैं, वो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं खाना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि मेरे घर में बहुत माखन है, लेकिन मैं मेहनत करके खाऊंगा, चोरी करके खाऊंगा। इसीलिए बाहर जाकर मेहनत करते हैं वो, ऐसे नहीं खाएंगे वो। तो यही कारण है कि वो माखन चोरी करते हैं ताकि अपनी मेहनत का खा सके। कोई कहे नहीं आगे चलकर उनको कि अरे तुमने ऐसे क्यों किया। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पहले ढूंढना पड़ता है कहाँ रखा है छुपा कर, फिर कहीं ऊपर होता है तो किसी न किसी तरह ऊपर तक पहुंचना होता है, और फिर भागना पड़ता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है कृष्ण को। तो कृष्ण मेहनत करके कमाना चाहते हैं, बेकार का बैठ कर नहीं खाना चाहते, इसलिए माखन चोरी करते हैं। तो फिर यशोदा माता दीपावली के दिन सुबह मंथन करने लगी, दही मथ रही थी, और दही मथते मथते वो कृष्ण की लीलाओं का गान कर रही थी। जैसे इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च। वो कृष्ण के बाल चरित्र की चरित्र को गीतों में बदल कर गा रही थी, और जो भी लीलाएं याद आ रही। और फिर आगे यशोदा माता का वर्णन करते हैं कि वो कैसी दिख रही थी। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि यशोदा माता ने केसरिया या पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अपने कमर में उन्होंने एक कमरधनी, क्या कहते हैं उसको, धनी, करधनी, उसको बांधा हुआ था। सोने की करधनी थी उसको वो पहने हुई थी, और यशोदा माता नथनी की रस्सी खींचने में काफी परिश्रम कर रही थी। उनकी चूड़ियां और कान के कुंडल हिल डुल रहे थे, और उनका पूरा शरीर हिल रहा था। अपने पुत्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके स्तन दूध से गीले थे। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर थी, उनका मुखमंडल पसीने से तर था, और उनके बालों से मालती के फूल गिर रहे थे। आचार्य ने इस विशेष श्लोक पर बहुत सुंदर टीकाएं की हैं। सबसे पहले वर्णन किया है कि यशोदा माता बहुत अच्छी तरह से, उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी थी, करधनी थी, और वो दही का मंथन कर रही थी, और करते करते उनके हाथों में जो चूड़ियां थी, इस लीला को सुनने से पहले या इस टीका को सुनने से पहले हम सबको ये स्मरण होना चाहिए कि ये लीला आध्यात्मिक जगत की लीला है, कोई भौतिक जगत की लीला नहीं है। और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय होता है, हर चीज में प्राण होते हैं, वहां के पत्थर भी चिन्मय हैं। चिंतामणि प्रपरसत मसुकल्प वृक्ष, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष के समान हैं, सारे पत्थर भी चिन्मय हैं, हर एक चीज चिन्मय है। तो वहां की चूड़ी, वहां के कुंडल, वो सब चिन्मय है, उनके भी भावनाएं हैं, वो भी सेवा करना चाहते हैं कृष्ण की। तो फिर वो जो चूड़ियां जो यशोदा माता के हाथ में थी, वो अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझ रही थी, क्योंकि वो देख रही थी कि आज यशोदा स्वयं दही मथ रही है। आज तक यशोदा ने दही नहीं मथी थी, क्योंकि बहुत सारी सेविकाएं थी, वो सेवा करती थी, लेकिन आज स्वयं यशोदा आए और वो दही मथ रही है। और किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। तो फिर जो चूड़ियां थी वो कीर्तन करने लगी। हम लोग करताल बजाते हैं ना, तो कर में ताल होने लगा, ताल कर यानी हाथ, और ताल अर्थात चूड़ियां बज रही थी, तो कर में ताल होने लगा, चूड़ियां कीर्तन करने लगी, क्योंकि बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज हमें अवसर मिला है, हम उस यशोदा के हाथ में हैं जो भगवान की इतनी बड़ी सेवा करने वाली है। और कानों के कुंडल क्यों हिल रहे थे? क्योंकि कानों के कुंडल भी सोच रहे थे कि जब भी कीर्तन होता है तो नृत्य होना चाहिए, तो फिर वो नृत्य करने लगे। तो चूड़ियां कीर्तन करने लगी, कुंडल नृत्य करने लगे, और जो यशोदा माता के स्तनों में दूध था जिसको रोज कृष्ण पिया करते थे, उनको एक भय हो गया। वो सोचने लगे कि आज यशोदा स्वयं माखन निकाल रही है तो ये तो अमृत होगा, और कृष्ण केवल इसको ही खाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमें कौन पिएगा, हमारे जीवन का लाभ क्या है अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाए। तो इसीलिए वो समूह से बाहर आ रहे थे यशोदा माता को ये बतलाने के लिए कि अरे हम हैं, आप क्यों माखन निकाल रही हैं, बंद कर दीजिए निकालना, कृष्ण हमें पी लेंगे। क्योंकि उनका ये भाव था कि अगर हमारी सेवा कृष्ण के प्रति नहीं हुई तो हमारे जीवन का क्या लाभ। ऐसे भक्त को भाव होना चाहिए कि अगर हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है, तो कृष्ण सेवा के लिए, और अगर हमारे शरीर से हम कृष्ण की सेवा नहीं कर पाए तो फिर इस शरीर का लाभ क्या है। इस शरीर को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और कैसे लगाना चाहिए इस लीला के अंत में आज हम सुनने वाले हैं। दो देवता हमें इसको बतलाएंगे, प्रार्थनाएं हैं उनकी। तो फिर ऐसे स्तनों से दूध बाहर आकर वो बतलाने लगा कि रे आप कीजिए मत। और उसी समय जो फूल, मालती फूल उनके बालों में थे, यहां वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, वो गिरने लगे। तो क्यों गिरने लगे, मालती फूलों ने सोचा कि वैसे ही यशोदा इतना श्रम कर रही हैं और ऊपर से उसके सर पर बैठकर बोझा नहीं बनना चाहिए, तो वो जल्दी से नीचे गिरने लगे। साथ ही साथ ये भी सोच रहे थे कि आज बड़ी विशेष लीला करने वाली हैं यशोदा माता, आज वो पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को बांधने वाली हैं, तो इसलिए पहले ही उनके चरण की धूली ले लेते हैं, बाद में अगर मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है, तो इसीलिए तुरंत नीचे गिर गए उनके चरणों में कि हमारा स्थान के सर पे नहीं है, चरणों में है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के आंदोलन में इस भाव को प्रकाशित किया, दास दास दासानुदास। हमें कृष्ण के चरणों में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें जाना है कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दासों के चरणों में। और ये परंपरा है जिसको उन फूलों ने दर्शाया कि हम यशोदा के चरणों में जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो फिर ऐसे यशोदा दही का मंथन करने लगी। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण उस समय सो रहे थे जब यशोदा ये कर रही थी, तो बड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी कि हो सकता है कहीं कृष्ण उठ नहीं जाए, उनके उठने से पहले मैं ये कर लूं। लेकिन कृष्ण ने जब यशोदा का परिश्रम देखा तो कृष्ण उठकर आ गए, बहुत जल्दी जल्दी आए। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, ताम स्तन्य काम आसाध्य, भगवान स्तन्य काम हो गए, अर्थात दूध पीने की इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई, इसीलिए भगवान भक्त की ओर गए, यशोदा की ओर गए। आचार्य इस पर टिप्पणी करते हैं कि इससे पहले सुखदेव गोस्वामी ने समझाया कि यशोदा बड़ा श्रम कर रही थी, किस लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ऐसा नहीं था कि उनके घर में माखन नहीं था, ऐसा नहीं था कि उनके घर में सेवक नहीं थे, सेविकाएं नहीं थी, लेकिन वो स्वयं परिश्रम कर रही थी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और जब कृष्ण ऐसे परिश्रम को देखते हैं, ऐसे भाव को देखते हैं भक्तों के, तो फिर वो भक्तों के हृदय के रस को पीने के लिए बहुत ही जल्दी भागे भागे आते हैं। जैसे यशोदा के हृदय के रस को पीने के लिए वो भागे स्तन काम में हुए, इसी तरह जब भक्त भगवान के लिए कोई परिश्रम करते हैं, कोई कष्ट लेते हैं, कोई सेवा करते हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो फिर ऐसे में कृष्ण उनके हृदय के रस अर्थात भक्ति को ग्रहण करने के लिए उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो कृष्ण आए, और कृष्ण ने आकर जो यशोदा दही का मंथन कर रही थी उस मथनी को पकड़ लिया। वैसे एक दृष्टि से कृष्ण उससे कह रहे थे यशोदा से कि अरे अब मैं आ गया हूं, अब इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है, किसके लिए कर रही थी ये सब परिश्रम, मेरे लिए ना, अब मैं आ गया हूं, अब परिश्रम बंद करिए। अर्थात अगर हम तपस्या करें और तपस्या के फल स्वरूप हमें कृष्ण की प्राप्ति हो, तो फिर उसके बाद तपस्या करने का क्या लाभ है? अगर कोई बहुत कड़ी तपस्या कर रहा है, एक पांव पर खड़ा है, कृष्ण आ जाए उसके सामने और कहे वत्स आंखें खोलो, और वो कहे नहीं मैं बहुत कड़ी तपस्या कर रहा हूं, मैं आंखें नहीं खोलूंगा, तो ऐसा क्या लाभ है? अरे तपस्या किस लिए कर रहे हो? कृष्ण के लिए। तो कृष्ण यही समझा रहे थे यशोदा मैया को कि इतना मेहनत किस लिए किया? मेरे लिए ना, मैं आ गया हूं, अब ये सब तपस्या बंद करो और अब मुझे प्रसन्न करो, अब मुझे दूध पिलाओ। और ऐसा कहकर, ऐसा करके तुरंत भगवान यशोदा की गोदी में चढ़ गए और फिर यशोदा उन्हें दूध पिलाने लगी। ऐसा बताया जाता है, आचार्य टिप्पणी करते हैं कि कई घंटों तक यशोदा दूध पिला रहे थे और कई घंटों तक दूध पी रहे थे कृष्ण। कृष्ण को भी आनंद आ रहा था, यशोदा को भी आनंद आ रहा था। आध्यात्मिक जगत में जब कृष्ण को आनंद आता है तो समय रुक जाता है, वहां कोई चीज की कमी नहीं रहती। तो इसीलिए न दूध कम हुआ, न यशोदा का आनंद कम हुआ और न कृष्ण का आनंद कम हुआ। कृष्ण पीते रहे, पीते रहे। और फिर जब बहुत समय हो गया तो यशोदा ने पद्म गंधा गाय के दूध को गर्म करने के लिए रखा था कि उसको कृष्ण को पिला सके। तो वो जो दूध था उसने देखा कि अरे कृष्ण तो दूध पिए जा रहे हैं और मुझे कोई पिएगा नहीं, तो वो जल्दी से ऊपर आने लगा, गिरने लगा। अर्थात एक दृष्टि से उसने सोचा कि जब मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊं तो इससे अच्छा है आत्महत्या कर लेता हूं, अग्नि में जल जाता हूं, तो इसीलिए बाहर आ गया हूं आत्महत्या करने के लिए। तो यशोदा ने जैसे ही देखा, दूध पिला रही थी कृष्ण को, तो जैसे ही देखा तो भागी, कृष्ण को रख दिया और भागी जल्दी से उस दूध को बचाने के लिए। अरे अरे आत्महत्या मत करो, मैं आ रही हूं। तो जब उस दूध ने देखा कि यशोदा माता आ रही है तो उसको बड़ी ग्लानी हुई अपने ऊपर, बड़ी शर्म आ गई कि अरे अरे मैंने क्या किया, अपनी इच्छा के लिए मैंने यशोदा की सेवा में बाधा डाल दी। तो बड़ा शर्म आ गई उसको, तो उस शर्म से वो नीचे चला गया, तो वो बाहर नहीं आया। तो फिर ऐसे यशोदा माता वहां गई, लेकिन जब गई तो कृष्ण को बड़ा क्रोध आ गया। यहां पर बहुत सुंदर वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि जब वो चली गई तो श्री कृष्ण अत्यधिक क्रुद्ध होकर अपने लाल लाल होठों को अपने दांतों से काटते हुए और आंखों में नकली आंसू भरते हुए कृष्ण ने एक कंकर मारकर तिलोगनी तोड़ दी। तो जब कृष्ण ने देखा कि यशोदा माता चली गई छोड़ के, तो बहुत गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया कृष्ण को? कृष्ण सोचने लगे कि अरे इस घर में मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है, वैकुंठ छोड़कर आया हूं मैं, सारा अपना धाम छोड़कर आया हूं मैं यशोदा के लिए, और एक दूध के लिए मुझे छोड़कर जा रही। चलो कोई बहुत बड़ी चीज के लिए जाती तो ठीक था, एक दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई, तो बहुत क्रोध आ गया। तो इसीलिए उन्होंने कहा, सोचा कि अब इस क्रोध में मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे यशोदा का जो ध्यान है फिर से मेरी ओर आ जाए। अब देखते हैं कि बच्चों में यह स्वभाव होता है, जब बच्चे रोते हैं नकली आंसू भर के जब रोते हैं, जैसे कृष्ण यहां पर झूठे आंसू थे, आंसू नहीं थे, रो नहीं रहे थे, तो बच्चे भी कभी कभी ऐसे रोते हैं, फिर वो इधर उधर देखते हैं कि कोई देख रहा है कि नहीं मेरी तरह। अगर कोई देख रहा होता है, अगर ध्यान देता है, तो और जोर से रोने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है तो बेचारे फिर चुप हो जाते हैं। ऐसा होता है ना? हाँ बोल रहे, ऐसा होता है। तो कृष्ण भी ऐसे ही, उन्होंने क्रोध आया, आंखों में आंसू भरे, लेकिन देखा यशोदा तो ध्यान ही नहीं दे रही है, तो उन्होंने कहा वैसा कुछ करना चाहिए कि सारा ध्यान इधर आ जाएगा यशोदा का। तो उन्होंने फिर वहां पर पड़ा हुआ पत्थर उठाया और जोर से, जो वहां पर मटकी थी जिसमें वो मंथन कर रही थी दही की, उसको तोड़ दिया, सारा दही फैल गया नीचे। बच्चों को ध्यान से सुनना चाहिए, आप लोग भी घर पे ऐसे ही करना सब, आज पत्थर लेके जाना करते सब लोग। खाना वाना शुरू करेंगे, क्या सिखा रहे हो, घर में जितनी मटकियां हैं जल्दी से छुपा लो जाकर। तो फिर उन्होंने उस सारे दही फैल गया, तो जब दही फैल गया तो कृष्ण सोचने लगा, अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब तो माई छोड़ेगी नहीं यशोदा मैया, अब तो मारेगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी सोचा कि वहां पर एक बासी मक्खन रखा हुआ है कल का, अब वो जाकर खाता हूं। क्यों खाता हूं कि पहले तो मटकी तोड़ी नुकसान हो गया घर में, अब जाकर बासी मक्खन खाऊंगा ताकि मेरी तबीयत खराब हो जाए और नुकसान हो यशोदा और कष्ट हो, तो वो मुझे कष्ट देती है मैं उन्हें कष्ट दूंगा। तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी भागने लगे, लेकिन भागने में भूल गए कि जब चलने लगे, छोटे से तो थे, 3 साल के थे अभी, तो फिर वो दही जो थी फैली हुई थी उसी पर चलने लगे, और फिर उसके चलने से जमीन पर उनके पांव के निशान बन गए। ऐसे दही में से चलते हुए अपने पांव के छोटे 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 निशान बनाते हुए भागते हुए गए कि यशोदा को पता नहीं चलेगा। तो फिर ऐसे जब वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि एक उखल रखा हुआ था, उसको उल्टा किया, उसके ऊपर चढ़े, माखन रखा था निकाल कर खाने लगे, खुद भी खाया, बंदरों को भी खिलाया, और फिर साथ ही साथ भयभीत भी थे। ऐसा नहीं है कि कृष्ण डरे हुए नहीं थे, बड़े भयभीत थे, माखन भी खा रहे थे, इधर उधर देख भी रहे थे कि यशोदा आ तो नहीं रही है, और बड़े डरे हुए थे। दरअसल जब ये लीला हुई थी तो वहां पर बहुत सारे भक्त थे, और उनमें भगवान की एक महान भक्त थी कुंती महारानी, और कुंती महारानी ने ये लीला को देखा, और इसीलिए आगे चलकर वो वर्णन करती हैं, बहुत सुंदर वर्णन करती हैं। वो कहती हैं, वो कहते हैं कि मैंने, हे कृष्ण, ये अपनी प्रार्थनाओं में वो कृष्ण को कह रही हैं, तब कृष्ण छोटे से बालक नहीं है, बड़े हो चुके हैं, तो कृष्ण को कहती हैं कि मैंने आपकी उस लीला को देखा था, और मैंने देखा था कि आप बड़े भयभीत थे, डरे हुए थे उस गोपी से, और गोपी आपको बांध रही थी, गोपी अर्थात यशोदा, यशोदा बांध रही थी, आप भाग रहे थे, यशोदा पकड़ने के लिए भाग रही थी, और आप भयभीत थे, डरे हुए थे। आप वो हैं जिनसे साक्षात भय भी भयभीत होता है, यद विभेति स्वयं भयम्, जो भय भी आपसे भयभीत रहता है, ऐसे आप हे कृष्ण यशोदा से भयभीत थे, डरे हुए थे, और इसको देखकर मैं बड़े मोह में पड़ गई हूं, मैं जान नहीं पा रही हूं आपकी लीलाओं को, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। तो यहां कृष्ण सही में भयभीत थे, कुंती महारानी ने देखा था और बाकी भी कई लोग देख रहे थे। तो फिर जल्दी जल्दी भागे और खा रहे हैं और भयभीत हैं, देख रहे हैं कहीं मां नहीं आ जाए। और फिर ऐसे में यशोदा जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि सारी दही फैली हुई है, एक कंकड़ पड़ा हुआ है वहां पर, और फिर उन्होंने पांव के निशान देखे तो जान गई कि ये करतूत केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है कृष्ण। तो उन्होंने सोचा कि अब बहुत हो गया है, अब तक मैंने उसे डांटा नहीं है, डराया नहीं है, लेकिन अब डांटना चाहिए, आज छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अब ये बहुत चोरी करने लगा है, और अगर अभी नहीं सिखाया तो आगे चलकर बड़ा चोर बन जाएगा, मेरे परिवार का नाम खराब हो जाएगा, वंश का नाम खराब करेगा। वैसे वंश का नाम कृष्ण खराब नहीं करते हैं, वो तो वंश प्रदीप है। राजा कुलशेखर अपनी प्रार्थनाओं में उनका वर्णन करते हैं, वंश प्रदीपो, कि आप अपने वंश का प्रदीप है, नाम करने वाले हैं। लेकिन यशोदा सोच रही थी कि मेरा तो कर्तव्य है मां के रूप में इसको सिखलाना कि चोरी नहीं करे। तो यशोदा ने जल्दी से छड़ी उठाई और फिर उन पांव के जो चिन्ह थे उनके पीछे पीछे जाने लगे, और कृष्ण ने धीरे से देखा, अरे यशोदा आ रही है, हाथ में छड़ी है, और घबरा गए। आज तक कभी यशोदा ने मारा नहीं था, डांटा भी नहीं था। 3 साल के बालक, हम सुबह भी वर्णन कर रहे थे कि छोटे बच्चों को मारना नहीं चाहिए। शास्त्रों में बतलाया गया है कि 1 साल से 10 साल तक जब तक बच्चा होता है उसको कभी मारना नहीं चाहिए आजकल के माता पिता की तरह। आजकल के माता पिता थोड़ा सा बच्चा रोता है तमाचा धड़ाक है ना, मारते हैं ना, हाँ कि ना, हाँ बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं हाँ बोला उसे। तो जरा सा कुछ होता है माताएं बच्चा सुन नहीं रहा है, लगा दिया तो तमाचा, बच्चा सुन लेगा बेचारा, है ना, बहुत मार खाते हैं बच्चे भी। एक्चुअली हम चाहते थे खड़ा होके हाँ बोले सबके सामने, लेकिन तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 1 साल से 10 साल तक बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। फिर 10 साल से 15 साल तक के बच्चे को थोड़ा बहुत डांट डपट सकते हैं, थोड़ा समझा सकते हैं ताकि बिगड़े नहीं, और फिर 15 साल के बाद उसके मित्र हो जाना चाहिए। फिर उससे उसको अपना बच्चा नहीं मानना चाहिए कि हम कभी भी मार सकते हैं, धम सकते हैं। वैसे बच्चों का पालन होना चाहिए। तो यशोदा ने सोचा, लेकिन अभी तक मारा नहीं, लेकिन ये चोरी बहुत कर रहा है, तो अब इसको कुछ तो करना चाहिए, थोड़ा डराना चाहिए ताकि ये चोरी नहीं करे। तो फिर छड़ी लेकर भागी, और जैसे ही कृष्ण ने देखा, वैसे कृष्ण ऐसे भी बताते हैं कि कृष्ण इधर उधर देख रहे थे, बंदरों ने इशारा किया दरअसल कि पीछे से मां आ रही है। तो फिर कृष्ण ने ऐसे घूम कर देखा, अरे यशोदा छड़ी लेकर आ रही है, तो भागे वो, कूद गए उखल पर से, ये जो उखल है यहाँ पर, उससे कूद गए और भागे एकदम जोर जोर से भागने लगे, और यशोदा भी भाग रही है। इसका भी वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर करते हैं बहुत सुंदर तरीके से, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को छड़ी लिए हुए देखा तो वे तुरंत ओखली के ऊपर से नीचे उतर गए और इस तरह भागने लगे मानो बहुत भयभीत हों, जिन्हें योगी बड़ी बड़ी तपस्याएं करके ब्रह्म तेज में प्रवेश करने की इच्छा से परमात्मा के रूप में ध्यान के द्वारा पकड़ने का प्रयत्न करने पर भी उन तक नहीं पहुंच पाते। भगवान कृष्ण को अपना पुत्र समझकर पकड़ने के लिए यशोदा उनका पीछा करने लगी। तो यशोदा भागने लगी। अब कृष्ण ने केवल इतना अंतर रखा कि यशोदा को लग रहा था बस अभी पकड़ में आ जाएगा, अभी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे, भाग रहे थे। तो ऐसे भागते रहे, पहले आंगन में, फिर कमरे में घुस गए, फिर पूरे ब्रज में, और सारे ब्रज में हंगामा हो गया कि अरे आज यशोदा छड़ी लेकर भाग रही है कृष्ण के पीछे। तो ये बहुत बड़ा हो गया सारे ब्रजवासियों के लिए, नेत्रोत्सव उनकी आंखों के लिए सबसे बड़ा उत्सव, सारे लोग आ गए देखने के लिए और बड़ा आनंद ले रहे थे सब, और यशोदा भाग रही है, कृष्ण भी भाग रहे हैं, सारी गलियों में भाग रहे हैं। और फिर ऐसे करते करते यशोदा बहुत थक गई, कृष्ण का पीछा करते हुए भारी स्तनों के भार से बोझे पतली कमर वाली माता यशोदा को अपनी चाल मंद करनी पड़ी। तेजी से पीछा करने के कारण उनके बाल शिथिल पड़ गए और उनमें लगे फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे थे। तो यशोदा माता बहुत थक गई, बहुत परिश्रम किया उन्होंने पकड़ने के लिए, और कृष्ण भी भगा रहे थे उन्हें, पकड़ में नहीं आ रहे थे। देखिए केवल 3 साल का बालक था यशोदा मैया, इतनी बड़ी थी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने उतना ही अंतर रखा था कि बस अभी हाथ में आया, अभी हाथ में आया, मगर आ ही नहीं रहे थे। और फिर जब कृष्ण ने देखा, दरअसल ऐसा हो रहा था, यहाँ पर आचार्य समझाते हैं कि यहाँ एक प्रतियोगिता चल रही थी। कृष्ण की असंख्य शक्तियां हैं जो कृष्ण की सेवा करती हैं, तो वो सारी शक्तियां सोच रही थी कि आज हम कृष्ण को बंधने नहीं देंगे, पकड़ने नहीं देंगे। और यहां यशोदा सोच रही थी कि मैं तो पकड़ के ही रहूंगी। तो इसीलिए जब कृष्ण भाग गए, भाग अंत में कृष्ण ने देखा, कृष्ण देखा कि यशोदा ने बहुत परिश्रम कर लिया, बहुत थक गई है, तो फिर उन्होंने कृपा दर्शाई, अपनी कृपा बरसाई, और वो बंद गए, वो पकड़ में आ गए। अगर कृष्ण नहीं चाहे तो कोई उनको पकड़ नहीं सकता है। सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन करते हैं, ब्रह्मा शिव बड़े बड़े देवता कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते, और उन्हीं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता ने प्रेम से पकड़ लिया। फिर यशोदा ने सोचा कि मारना नहीं चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, तो यशोदा ने सोचा मारना नहीं चाहिए, लेकिन डराना तो चाहिए। हाथ में छड़ी देखकर यशोदा ने सोचा कि बहुत ज्यादा डर गया तो फिर कुछ हो जाएगा, तो उसने छड़ी फेंक दी। लेकिन कहा इसको बांध देती हूं क्योंकि डर के मारे कहीं भाग गया तो क्या होगा। तो यशोदा ने कहा आज से तुम्हारा सब कुछ बंद, माखन खाना बंद, खेल बंद, बाहर जाना बंद, अब मैं तुम्हें बांध दूंगी। कृष्ण बड़े घबरा गए, रोने लगे। वर्णन है यहां पर कृष्ण रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे जब माता ने ऐसा कहा, क्योंकि कृष्ण सोचने लगे अरे बाहर जाना बंद, माखन खाना बंद, खेल कूद बंद, तो फिर करेंगे क्या। तो यशोदा ने पकड़ा और सबसे पहले अपने बालों में लगी हुई रस्सी निकाली, क्योंकि कृष्ण की कमर थी कितनी, वर्णन किया गया शास्त्रों में, कृष्ण की कमर एक मुट्ठी के बराबर थी, इतनी सी कमर थी उनकी। तो यशोदा ने सोचा अपने बालों से जो रस्सी बालों में बांधी थी उसको निकाल के बांध देती हूँ। बांधा तो थोड़ा सा दो उंगली कम पड़ गई रस्सी। तो यशोदा ने सोचा कि ठीक है, उन्होंने अपनी सेविकाओं को बांध और रस्सी ले आओ। कौन सी रस्सी लाओ? गोकंठ पाशे निबध्यमानम। गोकंठ गायों के गले में बांधने वाली रस्सी लेकर आओ, उससे आज बांधूंगी इसको। तो सेविकाएं वो रस्सियां लेकर आ गईं, फिर उन रस्सियों को जोड़ा बांधा, फिर भी दो उंगली कम और रस्सी, फिर दो उंगली कम। अब तो सारे ब्रज में हंगामा हो गया, गोपियां जोर जोर से आनंद ले रही हैं, हंस रही हैं और भाग भाग कर रस्सियां लेकर आ रही हैं और यशोदा को दे रही हैं, लो यशोदा बांधो। फिर जब यशोदा बहुत प्रयास कर रही हैं तो गोपियां हंस हंस के कहती हैं अरे यशोदा तुम्हारे लाला के कपाल में बंधना नहीं लिखा है, इसको मत बांधो, छोड़ दो। लेकिन यशोदा ने कहा नहीं, वो तो बांध कर ही रहेंगे। तो ये प्रतियोगिता थी, सारी शक्तियां कृष्ण की कह रही थी, सोच रही थी कि आज हम अपने स्वामी को बंधने नहीं देंगे, और एक तरफ कृष्ण की सारी शक्तियां और दूसरी तरफ यशोदा की भक्ति। अब इनमें प्रतियोगिता शुरू हो गई, शक्तियों ने पूरी अपनी शक्ति लगा दी, कृष्ण की शक्तियों की सारी शक्ति लग गई कि कृष्ण बंधे नहीं, और यशोदा ने भी अपनी पूरी भक्ति लगाई कि आज कृष्ण को बांधूंगी। तो फिर सारे ब्रज की रस्सियां आ गई, लेकिन फिर भी रस्सी दो उंगली छोटी। देखिए अगर ऐसी लीला यहां पर कहीं हो तो लोग भ्रम पड़ जाएंगे कि क्या हो रहा है, तुरंत छोड़ देंगे कि कोई भूत भूत आ गया है कि क्या हुआ है। इतनी सारी रस्सियां आने पर भी दो उंगलियां छोटी, और ऐसा नहीं है कि कृष्ण मोटे होते जा रहे थे, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कृष्ण हर रस्सी के साथ मोटे होते जा रहे थे। कृष्ण की कमर तो उतनी ही थी मुट्ठी भर, मस्तिष्क प्रमाण ऐसा के कहा गया है, मस्तिष्क में मुट्ठी में जितनी आती है उतनी ही थी। तो उतनी ही मुट्ठी वाली कमर सारे ब्रज की रस्सियों से नहीं बंध रही है, फिर भी गोपगण ग्वाल बाल और जितने भी गोपियां थी वो आनंद ले रही, बड़ा हंस रही। और उस समय जब ये प्रतियोगिता चल रही थी तो सारी शक्तियों को परास्त करने वाली शक्ति भगवान के हृदय में उत्पन्न हुई, और वो शक्ति है भगवान की करुणा शक्ति। फिर भगवान की कृपा करुणा उदित हुई, भगवान ने देखा यशोदा इतना प्रयास कर रही है, अब मुझे कृपा करनी चाहिए। तो फिर उस कृपा शक्ति के आगे, उस करुणा शक्ति के आगे सारी शक्तियां हार गईं। भगवान के असंख्य ऐश्वर्य हैं, लेकिन भगवान के सारे ऐश्वर्यों का आधार है उनकी करुणा। अगर भगवान के हृदय में करुणा नहीं हो तो उनके ऐश्वर्य का क्या लाभ है, उनकी शक्तियों का क्या लाभ है। समझिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, करोड़पति है, लेकिन उसके हृदय में करुणा नहीं है, वो दान नहीं देता, दानी नहीं है, तो फिर ऐसे धन का क्या लाभ है। आज सुबह भी हम लोग वर्णन कर रहे थे धन के बारे में, किसी को याद है क्या सुबह वर्णन किया था, सबसे बड़ा दानी कौन है? हाँ, कंजूस व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है, आज सुबह वर्णन किया था। चाणक्य पंडित बताते हैं कि जो कृपण है, कृपणो समोदानी न भूतो न भविष्यति, कहते हैं कि कृपण जो है व्यक्ति उसके समान दानी न भूतो न भविष्यति, ना हुआ है ना होगा, सबसे बड़ा दानी है वो। अब ये कैसे, एक कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति, ये दानी कैसे, और भी सबसे बड़ा दानी, और कैसा दानी, न भूतो न भविष्यति। और चाणक्य पंडित कह रहे हैं कृपण समादानी न भूतो न भविष्यति, क्योंकि कृपण अर्थात कंजूस वो तो ऐसा होता है कि दबा कर रखता है, किसी को नहीं देता, अपने ऊपर भी खर्चा नहीं करता। सुबह आपने बतलाया था कि एक बार एक व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस था, उसको लोगों ने कहा कि अरे सूखी रोटी खाते हो, कम से कम घी लगाकर खाया करो, इतना पैसा है कहां लेके जाओगे, घी लगाकर खाया करो। तो जब बहुत लोगों ने कहा तो बड़े भारी हृदय से 15 किलो का घी का डब्बा लेकर आया टिन, और बंद था वैसे ही रखा, उसका हृदय नहीं हो रहा था कि उसको खोल पाए, क्योंकि पहले लाने के लिए 15 किलो घी लाने के लिए कितना बड़ा पत्थर रखा होगा उसने अपने दिल पर, और अब लाकर रखा। तो फिर रोज जब चपाती बनती थी तो गर्म गर्म चपाती को बाहर से ही डब्बे पर लगा देता था कि कहीं घी खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि खोलूंगा लगाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कृपण था, ऐसा कंजूस था, बाहर से चिपका देता था, बस संतुष्ट, घी लग गया। आप लोग ऐसा नहीं करना। चाणक्य पंडित बताते हैं कृपण समोदानी न भूतो न भविष्यति, क्यों सबसे बड़ा दानी है वो, अस्पर्शेन अर्थानी, अर्थ अर्थात धन को स्पर्श भी नहीं करता वो, और बिना स्पर्श किए अस्पर्शेन को सारा धन दान में कर दे देता है मृत्यु के बाद, है कि नहीं। कितना कंजूस जीवन पर रहता, बचा बचा के रखता है, किसी को नहीं देता, पत्नी को नहीं, बच्चों को नहीं, परिवार को नहीं, कुछ नहीं, बचा के रखता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, अस्पर्शेन अर्थानि, बिना स्पर्श किए दान दे देता है सारा। तो इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि इसके इससे बड़ा दानी कोई नहीं है, जो स्पर्श भी नहीं करता और दे देता है। तो क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे कि धन, हाँ क्या चर्चा कर रहे थे, करुणा, करुणा, यस करुणा। तो अगर कोई बहुत धनी व्यक्ति है, उसके हृदय में करुणा नहीं है, तो क्या लाभ है उसके धन का, देखो कृपण है। इसी तरह भगवान के असंख्य ऐश्वर्य हैं, भगवान के पास सब कुछ है देने के लिए, लेकिन करुणा नहीं है हृदय में, तो क्या लाभ है, भगवान देंगे, जब हम भगवान से मांगते हैं तो भगवान क्यों देते हैं, करुणा के वश में, भगवान हम पर कृपा क्यों करते हैं, करुणा के वश में। और अगर करुणा ही नहीं है तो फिर सारे ऐश्वर्यों का कोई लाभ नहीं, इसलिए करुणा आधार है उनके सारे ऐश्वर्यों का। तो फिर वो शक्ति उदय हुई भगवान के हृदय में, और फिर उस शक्ति के द्वारा सारी शक्तियां समाप्त हो गई, और फिर उस कृपा के कारण भगवान यशोदा से बंध गए। तो यहां दो चीजें, यशोदा का प्रयास या परिश्रम और कृष्ण की कृपा, ये दोनों चीजें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण को बांधने के लिए, अपने हृदय में बांध कर रखने के लिए आवश्यक है। तो अगर एक भक्त ये चाहता है कि कृष्ण सदैव उसके हृदय में बंधे रहें, वो सदैव कृष्ण का दर्शन कर सके, तो फिर उसको कृष्ण को बांधने के लिए प्रयास करना चाहिए, तीव्रता लानी चाहिए हृदय में, तीव्र इच्छा, और फिर उस इच्छा से कृष्ण की कृपा आएगी, प्रयास जब वो करेगा, और उसके द्वारा फिर कृष्ण बंध जाएंगे। तो यशोदा माता ने बांध दिया। अब कई आचार्यों ने बताया कि जब यशोदा ने बांधा तो रोहिणी ने रोका नहीं, रोहिणी तो रोक सकती थी, या बलराम जी, वो कहां थे, बलराम जी ने क्यों नहीं रोका। तो दरअसल रोहिणी माता और बलराम जी उस समय उपनंद के घर गए हुए थे दिवाली की तैयारी करने के लिए, इसलिए वो वहां थे नहीं। नंद बाबा भी बाहर थे, और ग्वाल बाल इत्यादि थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि यशोदा ने बांधा है तो खोल दे, तो इसलिए बंध गए। अब जब बांध दिया तो उसके बाद बलराम जी आए, और बलराम जी जैसे ही आए और उन्होंने देखा कृष्ण बंधे हुए हैं, बड़े क्रोध में आ गए। बलराम जी आप जानते हैं कि भगवान के नित्य सेवक हैं, भगवान के ऊपर अगर इतनी सारी, इतनी बड़ी आपत्ति आ जाए, बांध दे कोई भगवान को,
दरअसल इस समय सारे देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे थे कि हे परब्रह्म, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते बंधे हुए हैं। तो सारे देवता उस समय देख रहे थे इस लीला को। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो परब्रह्म, वो स्वामी, जब हम कष्ट में होते हैं तो उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण रक्षा करो, कृष्ण कृष्ण महाभागा, और वो कृष्ण, वो स्वामी आज बंधे हुए। प्लास्टिक की आवाज नहीं है, शांति करो। तो इसीलिए वो देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हो रहा है, कैसे बंध गए। और बलराम जी जब आए तो बड़े क्रोध में, किसने बांधा? क्योंकि कृष्ण उनके तो आराध्य देव हैं। बलराम जी कृष्ण के लिए सारी सेवाएं करते हैं। कृष्ण का बिस्तर बलराम जी हैं, कृष्ण की मुरली बलराम जी हैं, कृष्ण का धाम बलराम जी हैं, कृष्ण के कपड़े बलराम जी हैं, कृष्ण के कीर्तन में बजने वाले वाद्य बलराम जी हैं। बलराम जी अपना सारा विस्तार कर लेते हैं सब चीजों में कृष्ण की सेवा के लिए। उनका उद्देश्य ही, उनका अस्तित्व ही केवल कृष्ण सेवा के लिए। तो जब बलराम जी देख रहे हैं कि कृष्ण को बांध दिया, उन्होंने भी कभी आज तक देखा नहीं था कि कृष्ण बंधे हैं, तो बड़े क्रोध में आ गए, पूछा ग्वाल बालों से किसने बांधा, खोलने जा रहे थे। ग्वाल बालों ने धीरे से कहा, यशोदा ने बांधा है। तो बलराम जी भी थोड़ा रुक गए, यशोदा ने बांधा है। पहले तो बड़े क्रोध में थे, अभी खोलना हूं जाकर, जा रहे थे बस खोलने के लिए कि पीछे से किसी ने कहा, अरे बोल बलराम जी, यशोदा मैया ने बांधा है, यशोदा ने बांधा है, वो भी नहीं खोल सकते। लेकिन अब क्रोध आ रहा है, क्या करें? क्योंकि जब बलराम जी को क्रोध आता है तो कुछ नहीं देखते। जब लक्ष्मण के रूप में थे और उनको क्रोध आया कि श्री रामचंद्र को वनवास हो रहा है, तो कितना क्रोध दिखाया उन्होंने, अभी सबको जला डालता हूं, सारी अयोध्या को जला दूंगा, ये दशरथ ये स्त्री कामी हो गया है, एक स्त्री के वश में आकर इसने ऐसा गलत आदेश दिया है, मैं इसको अभी बंदी बना देता हूं, आवश्यकता पड़ी तो इसका वध कर देता हूं। देखिए अपने ही पिता के बारे में क्रोध, क्यों? क्योंकि कृष्ण श्री राम उन पर आपत्ति आई थी और उस समय तो बंधे नहीं थे राम, तब इतना गुस्सा था, अब तो बंध गए, बड़े गुस्से में। लेकिन बच्चों ने बता दिया, बाकी बच्चों ने, यशोदा मैया ने बांधा है। फिर गुस्से में अंदर गए यशोदा के पास, बहुत गुस्से में थे। बलराम जी गुस्सा करें हैं तो आप जान सकते हैं, ये वो बलराम है जो सारे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं अनंत शेष के रूप में, और जब वो क्रोध करेंगे तो क्या होगा, सारे ब्रह्मांड हिल जाएंगे। और ये असली क्रोध था, कोई नकली नहीं था। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो कोई ड्रामा चल रहा था स्टेज के ऊपर और बलराम जी थोड़ा सा क्रोध दिखा रहे थे, मन में प्रसन्न थे, असली क्रोध में थे, कृष्ण को बांध दिया है तो बहुत क्रोध में गए। उनका क्रोध सारे ब्रह्मांडों को हिलाता है। यशोदा के सामने गए और कहने लगे, किसने बांधा है कृष्ण को? यशोदा ने ऐसे देखा, तो मैंने बांधा है। बलराम जी ठंडे हो गए, जानती हो कौन है वो, किसको बांधा है? पर ब्रह्म है, भगवान है। तो यशोदा ने पूछा, अच्छा कृष्ण भगवान है? हाँ भगवान है, और तुम कौन हो? बलराम जी फिर घबरा गए, ये क्या हो गया, तुम भी भगवान हो? सारे भगवान मेरे ही घर में आने थे एक ही समय पर, अभी तुरंत बाहर निकलो नहीं तो तुमको भी बांध दूंगी। तो बलराम जी तो बेचारे सारा क्रोध यशोदा मैया के सामने खत्म, भागे बाहर की, कहीं मुझे भी बंधना पड़ेगा। तो कोई खोल नहीं पाया कृष्ण को, किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई आगे बढ़कर खोल दे। अब बेचारे बंधे हैं। और ऐसा हुआ कि यशोदा कुछ समय तक वहां खड़ी रही, कोई देखे कोई खोले नहीं, फिर अंदर चली गई अपने कार्य करने के लिए। तो कृष्ण देख रहे हैं ग्वाल बालों की तरफ, ग्वाल बालों ने कहा, भैया हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बंधे रहो। बलराम जी, बलराम जी ने कहा, मैं क्या करूं, वो तो वो बोलती है, दो भगवान मेरे ही घर में क्यों आए हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, अब ना बलराम जी कुछ कर पा रहे हैं नहीं। तो कृष्ण ने सोचा कि यशोदा तो अपने स्वाभाविक कार्यों में लग गई, घर के कार्यों में, अब मुझे भी अपने स्वाभाविक कार्यों में लगना चाहिए। भगवान का स्वाभाविक कार्य क्या है?
भक्तों का उद्धार करना, जीवों का उद्धार करना, ये भगवान का स्वाभाविक कार्य है, इनका स्वभाव है। तो उन्होंने जब देखा कि यशोदा अपने स्वाभाविक कार्य में लग गई है, तो सोचा मुझे भी अपने स्वाभाविक कार्य में लगना चाहिए। तो उस समय उनकी दृष्टि अपने आंगन में दो वृक्षों पर गई, अर्जुन वृक्ष थे, यमला अर्जुन, जो पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था। इस कथा को हम लोग पिछले दो तीन दिनों में विस्तार से कह चुके हैं, नारद मुनि के उपदेशों को, इसलिए इस पर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने देखा कि ये दोनों वृक्ष खड़े हैं, उनको स्मरण हो आया कि नारद मुनि ने वचन दिया है कि आपको कृष्ण के दर्शन होंगे, तो फिर उनके वचनों को सत्य करने के लिए, दरअसल भगवान को इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं था, ये लोग कुबेर के पुत्र, इनको इनसे क्या लेना देना, कोई भक्ति नहीं इनके हृदय में, ये भक्त भी नहीं है। जब नारद मुनि के सामने आए थे तो उनका अपमान किया उन्होंने, तो ऐसे व्यक्ति से भगवान का क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि एक भक्त ने वचन दिया था कि आपको कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण उद्धार करेंगे आपका, तो उस वचन को उन्होंने स्मरण किया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भागवत बताता है कि निज भृत्य, अपने भृत्य, अपने भक्तों के वचनों को पूरा करने के लिए कृष्ण कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। आधा मनुष्य और आधा सिंह का शरीर भी ले लेते हैं। तो इसी प्रकार यहां पर नारद मुनि के वचनों को पूरा करने के लिए वो धीरे धीरे उखल में बंधे हुए ही चलने लगे। अब उखल बंधा हुआ था, उखल का भी वर्णन किया गया है, उखल को महान भक्त की तुलना दी गई है, क्योंकि जब कृष्ण चलते हैं तो उनके अनुगामी कौन होते हैं, उनका अनुगमन कौन करता है, भगवान के महान भक्त। तो उखल ये भगवान का महान भक्त है जो उनके पीछे पीछे चलने लगा, और वो बंधा हुआ था। आचार्य ने बहुत सुंदर टीका की है, जैसे यहां हम लोग देख रहे हैं कि रस्सी से वो बंधा हुआ है कृष्ण के कमर से, तो रस्सी को गुण भी कहते हैं। इस जगत में सारे जीव तीन गुणों से बंधे होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो ये भी एक रस्सियों के समान है, अलग अलग रस्सियों से। तो यहां इस लीला में उखल हमें दिखला रहा है कि अगर हमें बंधना है तो कृष्ण गुण से बंधना चाहिए, कृष्ण की रस्सी से बंधना चाहिए, अर्थात कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, तब हम वो तीन गुणों को त्याग सकते हैं। जब तक व्यक्ति कृष्ण गुण में नहीं बंधता या कृष्ण की रस्सी में नहीं बंधता, वो तीन गुणों में फंसा रहता है। इसलिए इन तीन गुणों के परे जाना यही भक्ति का उद्देश्य है, तब जाकर हम शुद्ध भक्ति प्रारंभ करते हैं। वो व्यक्ति भक्ति के योग्य हो जाता है, सर्वगुणान समतीतय ज्ञान ब्रह्म भूयाय कल्पते। बताया गया है भगवद गीता में, सर्वगुणान समतीतय ज्ञान, जो व्यक्ति इन गुणों को पार कर जाता है ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो व्यक्ति योग्य हो जाता है भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो अगर हमें किसी गुण से बंधना है तो कृष्ण गुण से बंधना चाहिए, कृष्ण की रस्सी से बंधना चाहिए, कृष्ण को अपने हृदय में लाना चाहिए। तो फिर ऐसे उखल पीछे पीछे चलने लगा, कृष्ण आए। भागवत वर्णन करता है कि कृष्ण ने उन दो वृक्षों के अंतः में प्रवेश किया, अर्थात हृदय में प्रवेश किया। आचार्य समझाते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि कृष्ण हमारे अंतः में, हृदय में प्रवेश करें, और तब हम अपने हृदय से ये जो असुर हैं इनको मार सकेंगे। तो कृष्ण ने उनके अंतर में प्रवेश किया। कई लोग वर्णन करते हैं, कई स्थानों पर हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि कृष्ण ने इन दो वृक्षों का उद्धार किया, ये गलत है। कृष्ण ने इन दो वृक्षों का उद्धार नहीं किया, कृष्ण ने स्पर्श भी नहीं किया, स्पर्श किया था उखल ने, उद्धार किया उखल ने, भगवान के भक्त ने, भगवान ने नहीं किया। जब भगवान तो वृक्षों के बीच से निकल गए थे अंतर में, लेकिन उखल ने स्पर्श किया, और उखल के स्पर्श से भगवान ने हल्का सा झटका दिया था, झटका भी नहीं दिया था, स्पर्श हो गया बस उतना ही काफी। तो उखल के स्पर्श से ये दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर पड़े। और ये वृक्ष कोई साधारण नहीं थे, कई वर्षों से वहां पर थे, बड़े ऊंचे थे, इतने ऊंचे थे कि दूर से जब ग्वाल बाल आया करते थे, गोप आते थे, तो गांव की शुरुआत से ही वो वृक्ष दिखाई दे जाते थे, बड़े ऊंचे वृक्ष थे। और आज उखल ने उनका उद्धार कर दिया। अर्थात ये हमें जानना चाहिए कि अगर हम अपनी बद्ध अवस्था से, जिस अवस्था में नारद मुनि ने श्राप दिया था नलकुबर और मणिग्रीव, क्योंकि नलकुबर और मणिग्रीव भोगों में पड़े थे और भोगों में इतने रत हो गए कि जब नारद मुनि सामने आए तो उनके सामने ऐसे ही नग्न खड़े रहे। जो स्त्रियां थी वो छुप गईं, अपने अपने शरीर को छुपा लिया, लेकिन ये नग्न खड़े रहे। अर्थात भोग करते करते जीव इतना उसमें आसक्त हो जाता है कि सही और बुरे की पहचान को भूल जाता है। ये स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति नग्न अवस्था में है और कोई दूसरा आता है तो उसको अपने आप को ढकना चाहिए। और यहां तो एक साधु आए थे, देव ऋषि आए हैं, नारद आए हैं, कितना स्वागत करना चाहिए, कितना आदर करना चाहिए, लेकिन अपमान कर दिया, क्योंकि मदांध थे, अंधे हो गए थे, इसीलिए उन्होंने वृक्ष बनने के लिए कहा। तो ये शास्त्रों का नियम है कि हम जैसे कार्य करते हैं वैसा ही हमें अपना अगला शरीर मिलता है। दरअसल अपने कार्यों से हम अपने अगले जन्म, अपने अगले शरीर को तैयार कर रहे हैं। इस लीला में बतलाया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को बहुत ज्यादा दिखलाता है, अंग प्रदर्शन करता है, जैसे आजकल बहुत लोगों को ये कार्य करने की इच्छा है, कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं, मिस्टर यूनिवर्स अपने शरीर को दिखाते, देखो मैं कितना पहलवान हूं, और मिस यूनिवर्स वो भी, वहां पर भी अंग प्रदर्शन। तो ये सारे लोग अपना अगला जीवन निश्चित कर चुके हैं, इनको अगले जीवन में केवल वृक्ष का शरीर मिलेगा, क्योंकि भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं कि आप ऐसे रहना चाहते हो ना, मनुष्य जीवन उसके लिए नहीं, मनुष्य जीवन में आपको पूरा ढककर रहना चाहिए, लेकिन आप चाहते, जैसे आजकल बड़े बड़े फैशन शो होते हैं, हमने एक बार सुना था कि एक फैशन शो में फर्स्ट प्राइज एक ऐसी युवती को मिला जिसने न्यूज़पेपर के कपड़े पहने हुए थे, न्यूज़पेपर से बना, बताइए अगर हवा तेज चलती तो फिर। तो कैसे लोग इतनी किस भावना तक चले गए हैं, कोई पत्तों के पहनते हैं, मतलब आदिवासी बन रहे हैं, ये जो आदिवासी थे इस वजह से कपड़े पहना करते थे, तो लोग आदिवासी बन रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो फिर ऐसे ये जो भावनाएं हैं, ये सारे लोग केवल आगे चलकर वृक्ष बनने वाले हैं, निश्चित है, फिर खड़े रहेंगे कई वर्षों तक, तो ऐसे ही खड़े रहे कई वर्षों तक। तो फिर भगवान ने उखल के द्वारा इनका उद्धार किया और ये गिर पड़े। और जब ये गिरे बहुत जोर से आवाज आई, सारे ब्रज में हंगामा हो गया, क्या क्या हुआ, कृष्ण ने क्या, कृष्ण को चोट लग गई, कृष्ण को क्या हुआ, सब भागे वहां पर, नंद बाबा आए। लेकिन उससे पहले जब वहां पर कृष्ण थे और ये वृक्ष गिर गए, तो उन वृक्षों में से, यमलार्जुन वृक्षों में से दो बड़े ही सुंदर युवक या देवता वहां से निकले, और ये दोनों, इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण की। आज समय नहीं है कि हम इनकी प्रार्थनाओं पर चर्चा करें। तो जब ये नलकुबर मणिग्रीव आए, तो इनके हृदय में आज तक, इससे पहले, इस लीला के पहले, नारद मुनि से मिलने से पहले कोई भक्ति नहीं थी, ये तो मदांध थे, लेकिन नारद मुनि की कृपा से भक्ति हुई और फिर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्थिति का वर्णन किया कि आप तो पर ब्रह्म हैं, आप सारी सृष्टि के स्वामी हैं। और फिर ऐसा सारा वर्णन करने के बाद, कई चीजों को कहने के बाद, अंतिम एक प्रार्थना कही। तो हम लोग केवल उस अंतिम प्रार्थना को, उनकी अंतिम प्रार्थना को यहाँ पर पढ़ेंगे कि कितनी सुंदर उनकी प्रार्थना है, और यही हमारी आज भगवान श्री दामोदर से प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रार्थनाएं करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए थे। हम लोग आगे वर्णन करेंगे कि भगवान ने उनको क्या आशीर्वाद दिया। तो यही प्रार्थना थी जिसको सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, और यही प्रार्थना हम सबको अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहिए। जब भगवान के दर्शन करें, भगवान के सामने आए, भगवान का स्मरण करें, तो हमारे हृदय में ये प्रार्थना होनी चाहिए। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है, इसको हम पढ़ेंगे। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्म सुमनस्तभ पादयो नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने तु भगवत्तनो नाम। बहुत सुंदर प्रार्थना है। वो कहते हैं जब उन्होंने सब भगवान का वर्णन कर लिया, भगवान का गुणगान कर लिया, अब भगवान से कुछ मांग रहे हैं। और ये याद रखिए, ये उन्हीं भगवान से मांग रहे हैं जो अभी तक बंधे हुए हैं। केवल कृष्ण हैं जो बंधे रहकर मुक्त कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति बंधे रहकर किसी को मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण हर अवस्था में भगवान है, तो वो बंधे रहकर भी मुक्त करते हैं। तो इसीलिए ये प्रार्थना हम सब की प्रार्थना है। आप कृपया इसको बड़े ध्यान से अपने हृदय में धारण कर लीजिए, और जब भी भगवान को देखें, भगवान का दर्शन करें, भगवान का स्मरण करें, जो कि 24 घंटे करना चाहिए, हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले वो कहते हैं वाणी गुणानुकथने। हे कृष्ण, अब से हमारी वाणी, हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें। वाणी गुणानुकथने, तो कह रहे हैं कि अब से अगर हम जो भी बोलें, एक भी शब्द हमारे मुंह से निकले, तो वो आपके गुण का होना चाहिए, आपका गुणगान करना चाहिए। वाणी गुणानुकथने, तो ये प्रार्थना वो कर रहे हैं कि हमारी वाणी और किसी चीज में नहीं लगे, कोई प्रजल्प नहीं करे, कोई बाहर की चीज नहीं बोले, क्योंकि जितना हम वाणी से बोलते हैं उतना ही हम उस कार्य को करते हैं। जब भगवान का गुणगान वाणी से ज्यादा होता है तो फिर भगवान की भक्ति बढ़ती है। इसलिए वाणी गुणानुकथने, वाणी को आपके गुण और आपके रूप, आपकी लीलाओं के वर्णन में लगाना चाहिए। फिर आगे वो कहते हैं श्रवणों कथायाम, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें। ये भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग नवदा भक्ति का पालन करते हैं, जिसे प्रहलाद महाराज ने समझाया, अन्य शास्त्रों में वर्णन है। तो फिर ये प्रार्थना को हमें करना चाहिए, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, कि आपकी कथाओं को मैं हमेशा श्रवण करता रहूं, कभी तृप्त नहीं हो। जैसे विदुर भागवत में वर्णन करते हैं, क्रीड़न विधत्ते त्रिजगोसुराना क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनोन तृप्त्यपि श्रृण्वताना सुश्लोक मौले श्वरितामृतानि। हे कृष्ण, आपकी कथाएं ऐसी हैं कि उसको सुनते हुए कभी व्यक्ति तृप्त नहीं होता। और इतना ही नहीं, भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियां भी यही वर्णन करती हैं, तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषापं श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये पूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, तब कथा अमृतम, आपकी कथा का अमृत तप्त जीवनम, हमारे तपते हुए जीवन को शांत करता है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महान भक्त कभी भीरी रीतम इसको गान करते हैं। और कैसी ये कथा है, कल्मषापहम, जितने भी कल्मष है हृदय से वो निकल जाते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, केवल सुनने मात्र से व्यक्ति का मंगल हो जाता है। श्रीमदाततम, और जितने भी लोग हैं इस बात का प्रचार बाहर कर रहे हैं, जिनके पास जो बड़े बड़े स्थितियों में हैं, अच्छी स्थितियों में, युधिष्ठिर इत्यादि, युधिष्ठिर ने किया भगवान के नाम का प्रचार करने में, युधिष्ठिर सबसे आगे है। अपने कार्यों से उन्होंने भगवान के गुणों का प्रचार किया। तो कवि भीरी रीतम श्रीमदाततम भूरि गृणंती ये भूरिदा जना, तो ऐसे लोग जो भूरिदा, जो बड़े दयालु हैं, वो आपकी कथाओं को सुनाते हैं। वैसे गोपियों के इन भावों को भी समझना चाहिए। जब गोपियां ये गोपी गीत गा रही थी, ये तव कथा अमृतम उन्होंने गाया, तो उनके हृदय में एक विरह की भावना थी, इसका इसलिए उनका हृदय जल रहा था। लेकिन गोपियां भी चाहती केवल कृष्ण को थी। गोपियों ने केवल एक ही इच्छा की थी कि कृष्ण मिले, उनकी कथा नहीं। लेकिन कृष्ण नहीं थे तो उनकी कथाओं से वो संग कर रही थी। इसीलिए इस श्लोक को तव कथा अमृतम दूसरे शब्दों में भी आचार्य समझाते हैं। वो कहते हैं तब कथा मृतम, इसका अगर संधि विच्छेद दूसरी तरीके से करें तो गोपिया कहती हैं तब कथा मृतम, आपकी कथा मार डालने वाली है, अमृत नहीं मार डालने वाली है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, अच्छा भला हमारा जीवन चल रहा था, अपने बच्चों को पाल रहे थे, पतियों के साथ थे, आपकी कथा सुन ली, सब सत्यानाश हो गया। तब कथा मृतम तप्त जी, सारा जीवन तप्त हो गया है। जब से आपकी कथा सुनी है तब से सारा जीवन तप्त हो गया, जला कर रख दिया है आपने। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि भीरी रीतम, और इसको कौन गाते हैं, कोई बहुत अच्छे लोग नहीं गाते, कवि गाते हैं। कवि, कवि मतलब वो कवि जिनकी कविताएं कोई सुनते नहीं है। वैसे भी आप जानते हैं ऐसे बहुत कवि होते हैं जो कविताएं लिखते हैं, फिर उनकी कोई कविता सुनता नहीं है, तो उनको पकड़ पकड़ कर सुनाते कि नहीं अरे तुम बैठो। कभी कभी कहते हैं कि अरे तुम बैठो, मैं तुमको कुछ देता हूं लेकिन सुनो। हमें एक ऐसा अनुभव हुआ था, वो कवि तो नहीं थे लेकिन एक नवदीक्षित भक्त थे, हमें पता नहीं था। हम एक बार उस केंद्र में गए थे तो हमें कुछ घंटों के लिए थे वहां पर, तो ये लेने के लिए आए हमें स्टेशन पर, और गाड़ी में लेकर गए और बहुत अच्छी तरह बिठाया। और हमने सोचा कि हम इतना जानते भी नहीं है, इनको ज्यादा नहीं जानते थे, तो इतना कर रहे हैं, बहुत से तो उनको बार बार धन्यवाद दे रहे थे कि भैया नहीं नहीं होता। तो फिर एक कमरे में, अच्छा कमरा था, वहां उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की। तो हमने कहा यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, कहीं और जाकर, ये तो अच्छा कमरा है, सब टेक वगैरह लगा हुआ था, बहुत बढ़िया। हमने कहा यहाँ क्यों प्रसाद लेना, कहीं और नहीं नहीं आप यहीं लोग बैठ कर, हम लोग दो जन थे, आप यही लो। तो वो अकेले थे घर में, तो हमने सोचा कि भाई हम खुद ले आते हैं। तो नहीं आप बैठो, आप बिल्कुल हिलो मत, मैं सब ला कर देता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रसाद ला के दिया, और जैसे हमने प्रसाद खाना शुरू किया उन्होंने अपना सीडी ऑन कर दिया। उन्होंने एक सीडी बनाया था, उनकी आवाज में कुछ भजन गाए थे, तो उन्होंने सीडी ऑन कर दिया और कहा कि अब आप ये सुनो। तब हम प्रसाद खाना शुरू कर दिए थे तो उठ तो सकते नहीं थे, तो फिर वो पूरा आधा घंटा हमको वो सुनना पड़ा। तो ऐसे तो गोपिया कहती है ऐसे कभी कभी भीरी रीतम, जिनकी कोई सुनता नहीं है वो लोग आपकी कथाओं का गुणगान करते हैं। श्रीमदाततम, और कौन लोग उनको सहयोग देते हैं, जो पैसे के नशे में, श्रीमद श्री यानी धन और उसका मद यानी नशा, तो जो पैसे के नशे में है युधिष्ठिर आदि, वो लोग इनको धन दे देकर और बढ़ावा देते हैं आपकी कथाएं सुनाने। फिर आगे है श्रवण मंगलम, कल श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, तो श्रवण सुनने से मंगल हो जाता है। तो गोपियां कहती हैं अरे उसका मंगल होगा ना जिसका अमंगल है, तो हमारा क्यों होगा, हम थोड़ी पापी हैं तो इसलिए हमें नहीं सुनना है। कल्मषापहम, कल्मष निकल जाते हैं उनके हृदय से जिनके हृदय में कल्मष है, हमारे हृदय में नहीं है, हमें कोई इच्छा नहीं है आपकी कथा सुनने की। हाँ फिर क्या है आगे, भूरि गृणंती ये भूरिदा जना, तो सारे जगत में ये जो ऐसे लोग हैं नारद इत्यादि, ये बेकार में जाकर आपकी सारी जगत में कथाएं फैलाते रहते हैं। इनको और कुछ काम वाम नहीं है, तो ऐसे भी आचार्य वर्णन करते हैं। तो इसलिए कृष्ण की कथाएं ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए। रामायण में भी वर्णन है कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बनाया है जिसमें कृष्ण कथा की नदियां निरंतर पड़ती रहती हैं, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में भगवान वास करते हैं। तो इसीलिए यहां वो प्रार्थना कर रहे हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया और हस्तौच कर्मसु, हमारे हाथ हमारे पांव और हमारी अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी सेवा में लगे। तो जब हम लोग राधा गोकुलानंद के सामने आज खड़े हों तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जिह्वा आपके गुणगान में लगे, हमारे कान आपके श्रवण में लगे, हमारे हाथ हमारे पांव हमारी इंद्रियां आपकी सेवा में लगे, आपके मंदिर मार्जन में, आपके लिए हार बनाने में, आपके लिए अन्य सेवाएं करने में। तो ये हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारा मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करे, ये वो वर्णन करते हैं। मनस्तव पाद योनः, मन आपके चरणों का सदैव स्मरण करे। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है, कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है, धनम देहि रूपम देहि कुछ जरूरत नहीं है, केवल यही मांगना है। फिर आगे वो कहते हैं, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, कि मेरा जो सिर है, हमारा सिर इस संसार की हर उस वस्तु को नमस्कार करे जो आपसे संबंधित है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा सिर केवल आपके सामने झुके बाकी किसी के सामने नहीं, हर उस वस्तु से, भगवान भगवान के भक्त भगवान का अन्य साज सामान ये सब आदरणीय है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, आराध्य ब्रजेश तनयस्तद् धाम वृंदावनम्, जैसा आराध्य भगवान श्री कृष्ण है वैसे ही आराध्य उनका धाम है। तो ये प्रार्थना भी वो लोग कर रहे हैं। और फिर अंतिम प्रार्थना वो करते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनुना, हमारी दृष्टि का क्या होना चाहिए, क्योंकि ये आंखें हैं जो सबसे ज्यादा कष्ट देती हैं। बेला मंगल ठाकुर बताते हैं कि सारी काम वासनाएं इन आंखों से प्रवेश करती हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया था। अब हम तो वो कर नहीं सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए क्या करना चाहिए ये बताते हैं कि आंखों से, हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। देखिए ये भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं केवल आपका दर्शन करता रहूं, उन्होंने कहा स्मृत्या दृष्टि सताम, सताम का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो भगवान को प्रिय है वैष्णव, तो हमारी दृष्टि सदा वैष्णवों के रूपों का दर्शन करे। तो ये प्रार्थना आज के दिवस पर नलकुवर और मणिग्रीव ने अपने रूप में आकर की। और फिर इस तरह जब दोनों ने प्रार्थनाएं की तो भगवान ने उनसे क्या कहा, भगवान कहते हैं कि परम संत नारद मुनि अत्यंत कृपालु हैं, उन्होंने अपने शाप से तुम दोनों पर बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्गलोक से गिरकर वृक्ष बने, किंतु उन्होंने तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता, इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है तो उसका भव बंधन छूट जाता है। देखिए स्वयं भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, इसी को नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, दर्शन पवित्र करो ए तो मार्ग। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जैसे सूर्य के समान, सूर्य के सामने जो व्यक्ति होता है तो अंधेरा नहीं रहता है, ऐसे ही केवल वैष्णवों के समक्ष आने से ये भौतिक जगत का अंधकार ये बंधन ये टूट जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हे नलकुवर और मणिग्रीव, तुम दोनों अपने घर जाओ, और क्योंकि तुम्हें मेरी भक्ति में, तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी और अब तुम उस पद से कभी नीचे नहीं गिरोगे। तो ये भगवान ने आशीर्वाद उन दोनों को दिया जब उन्होंने ऐसी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण की। तो ऐसी भक्ति ऐसी प्रार्थनाएं हमें भगवान के प्रति करनी चाहिए जिससे हम लोग आज के इस दिवस पर जो लीला भगवान ने की, जैसे यशोदा ने अपने प्रयास से भगवान की कृपा को उदित कराया उनके हृदय में, ऐसे ही हम अपनी भक्ति से अपने प्रयास से भगवान की कृपा को उदित करा सकते हैं, भगवान को अपने हृदय में बांध सकते हैं। अगर ये प्रार्थनाएं आज के दिन पर हम भगवान से करें। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोन स्मर्त्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। तो इस प्रार्थना के साथ आज के इस प्रवचन को यहीं पर रोकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।